ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 9, अध्याय संख्या 21 और श्लोक संख्या 22 से लेके 36 तक। स्कंद 9, अध्याय संख्या 25, अध्याय संख्या 21, श्लोक संख्या 22 से 36। 25वां श्लोक है, सामने मेरे पीछे दोहराइएगा। सह कृत्व्याम शुक कन्यायाम ब्रह्म दत्तम अजीजनत योगी सह गवी भार्यायाम विश्वकसेनाम अधात सुतम। सह उसने अर्थात नीप कृतवयाम कृत्वी नामक पत्नी से शुक कन्यायाम शुक की कन्या से ब्रह्मदत्तम ब्रह्मदत्त नामक पुत्र अजीजनत उत्पन्न किया योगी योगी सह वह ब्रह्मदत्त गवी गौ या सरस्वती नाम की भार्यायाम पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेनम विश्वक्सेन को अधात उत्पन्न किया सुतम पुत्र। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। शुक की पुत्री अर्थात नीप की पत्नी कृत्वी के गर्भ से राजा नीप के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त महान योगी था। उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर जिस शुक का वर्णन है वह भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी से भिन्न है। व्यास देव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार से पाया जाता है। उसमें बतलाया गया है कि व्यास देव ने जबाली की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया और दोनों ने अनेक वर्षों तक इकट्ठे तपस्या की। तब व्यास देव के वीर से उसे गर्भ रह गया। यह बालक अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा और जब पिता ने बालक के गर्भ से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न कर दिया जाए। तब व्यासदेव ने बालक को आश्वस्त किया कि वे माया से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, किंतु बालक को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पिता अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों में लिप्त था। तब व्यासदेव द्वारका गए और भगवान को अपनी समस्या बतलाई। व्यासदेव की प्रार्थना पर भगवान उसकी कुटिया में आए और गर्भस्थ बालक को आश्वस्त किया कि वे माया से मुक्त रहेगा। इस पर बालक गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही परिवाज्रकाचार्य के रूप में घर से बाहर चला गया। जब पिता व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र शुकदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे तो उनके साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली शुकदेव उत्पन्न कर दिया जो बाद में गृहस्थ बना। इसीलिए इस श्लोक में वर्णित शुक कन्या इसी नकली शुकदेव की कन्या थी। मूल शुकदेव तो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। श्लोक संख्या 22। अजी मीण का पुत्र बृहदिशु था। बृहदिशु का पुत्र बृहदनु था। बृहदनु का पुत्र बृहदकाय था। बृहदकाय का जयद्रथ नाम का पुत्र हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद था। उसका पुत्र सेनजित था। सेनजित के पुत्रों के नाम थे रुचराश्व दृढ़ानु काश्य और वत्स। रुचराश्व के पुत्र पार था। पार के पुत्र पृथुसेन और नीप थे। नीप के 100 पुत्र थे। शुक की जो आज का श्लोक है, शुक की पत्नी अर्थात नीप की पत्नी कृत्वी के गर्भ से राजा नीप के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त महान योगी था, उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जैगी शव्य ऋषि के उपदेशानुसार विश्वक्सेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वक्सेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ, उदकसेन से बल्लाट, ये सभी बृहदिशु के वंशज थे। द्विवीर का पुत्र यविनीर था, उसका पुत्र कृतिमान था, कृतिमान का पुत्र सद्धति के नाम से विख्यात था, सद्धति से दृढ़नेमी नाम का पुत्र हुआ जो सुपार्श्व का पिता बना। सुपार्श्व के से सुमति नाम का पुत्र, सुमति से सन्नतिमान तथा सन्नतिमान से कृति उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा से योग शक्ति प्राप्त करी और साम वेद तथा प्राच्य साम नामक श्लोकों की 6 संहिताएँ पढ़ाई। कृति का पुत्र नीप था, नीप का पुत्र उद्ग्रायुद्ध हुआ, उद्ग्रायुद्ध का पुत्र क्षेम्य हुआ, क्षेम्य का सुवीर नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर का पुत्र रिपुंजय था, रिपुंजय का पुत्र बहुरथ हुआ, पूर्वमीड़ निसंतान था। अजमीड़ को अपनी पत्नी नलनी से नील नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, नील का पुत्र शांति था, शांति का पुत्र सुशांति था, सुशांति का पुत्र पुरुज हुआ, पुरुज का अर्क, अर्क का भैराश्व था, भैराश्व के 5 पुत्र हुए मुद्गल, यवनीर, बृहदिश्व, काम्पिल एवं संजय। पर्याश्व ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटो तुम लोग मेरे 5 राज्यों का भार संभालो क्योंकि तुम ऐसा करने में पर्याप्त सक्षम हो। इस तरह उसके 5 पुत्र पंचाल कहलाए, मुद्गल से ब्राह्मणों का गोत्र बना और मौद्गल्य कहलाया। वैराश्व के पुत्र मुद्गल से जुड़वा संतान हुई जिसमें 1 पुत्र था और 1 कन्या। पुत्र का नाम दिवोदास रखा गया, कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या के गर्भ से उसके पति गौतम मुनि के वीर से शतानंद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था जो धनुर्विद्या में अत्यंत पटु था। सत्यधृति का पुत्र शरद्वान हुआ और शरद्वान की भेंट उर्वशी से हुई तो शर नामक घास के गुच्छे पर उनका वीर्यपात हो गया। इस वीर से 2 शुभ शिशु उत्पन्न हुए जिनमें से 1 लड़का था और दूसरा लड़की। जब महाराजा शांतनु शिकार करने गए तो उन्होंने जंगल में जुड़वा शिशुओं को पड़ा देखा, विद्यावश उन्हें घर ले आए। फलस्वरूप बालक का नाम कृप नाम से विख्यात हुआ और बालिका का नाम कृपी पड़ा। वह बाद में कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। वंशावली चल रही है, वंशावली में डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, डिटेल्स नाम लिखे गए हैं बस, तो हम जो है उन नामों के ऊपर ज़्यादा चर्चा न करके मुख्य तौर पे ये देखते हैं कि आज का जो परपट है, आज का जो तात्पर्य है, उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी के बारे में थोड़ी सी चर्चा आई है। 2 बातें यहाँ पर आई स्पष्ट, प्रभुपाद लिखते हैं बड़ा स्पष्ट रूप से कि एक असली सुखदेव हैं और एक नकली सुखदेव हैं। नकली सुखदेव का अर्थ यह है कि नाम तो सुखदेव है क्योंकि सुखदेव का ही प्रारूप है, परंतु कार्यकलाप उनसे अलग है। जो मूल सुखदेव हैं, जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, जो जवाली की पत्नी, जवाली की पुत्री से और व्यासदेव जी के वीर से प्रकट हुए, उनकी चर्चा यहाँ आई है। वो आजीवन ब्रह्मचारी थे जिन्होंने भागवत का संदेश दिया, परंतु अब उनको एक जो है अपना प्रारूप प्रकट करना पड़ा। उसी प्रारूप से जो है यहाँ इस वक्त जो है संतान की प्राप्ति हो रही है। तो अब आता है कि भरत वंश की क्वालिटी क्या है। हमने 9वें स्कंद के अंदर सूर्यवंश की भी चर्चा करी और भरत वंश की भी चर्चा करी, दोनों चर्चाएं हो रही ना इसके अंदर। सूर्य वंश का गुण क्या है और भरत वंश अर्थात जो पुरु वंश आ रहा है या जो ये चंद्रवंशी, बेसिकली ये चंद्र से चंद्रवंशी कहलाते हैं, वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, सो दोनों में भेद क्या है। मूलभूत भेद है, एक बेसिक भेद है, एक एक लाइन का भेद है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। वो भेद क्या है और उसमें क्या बात हमें समझनी चाहिए, क्या हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैसेज है हमारे लिए, एक संदेश है हम लोगों के लिए। वो क्या संदेश है कि अगर आप सूर्य वंश का पूरा देखेंगे, पेडिग्री उनका जो हायरार्की है, उनका जो वंशावली है वो देखेंगे, उसमें जानेंगे कि भोग विलास के लिए स्थान नहीं है। भोग विलास के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए स्थान नहीं है। जब हम सबसे जो मुख्य वंशावली का अंश देखते हैं वो है रामचंद्र जी, भगवान राम। रामचंद्र जी के जीवन में आपको कहीं राज्य के प्रति आकर्षण, मैं बड़ा पुत्र हूं मुझे राज्य करना चाहिए, मैं तो लड़ूंगा, आई विल फाइट, अगर माता कैकेयी ने कह दिया है कि राम को 14 साल का वनवास दिया जाए तो मैं, रामचंद्र जी रिफ्यूज कर देते, मैं बड़ा पुत्र हूँ, राज्य में मेरा अधिकार है, मैं तो वन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि राज्य के प्रति आकर्षण है या मोह है ऐसा देखने को नहीं मिलता, त्याग की भावना मिलती है। बड़ों का आदर मान सम्मान करना और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे, उनके आदेश का अक्षरश पालन करना, ये आपको मर्यादा के साथ दिखाई देता। इंद्रिय भोग की आपको कोई चर्चा वहां दिखाई नहीं देती। आप बता दीजिए कि 14 वर्ष जो है भगवान सीता माता के साथ रहे वन में, कोई संतान की प्राप्ति हुई, एक बार भी ऐसा लगा कहीं हुआ? लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा राम जी का साथ देने के लिए, सेवा का भाव था, सेवा का भाव। और सेवा का भाव कैसा है कि 14 वर्ष तक जो है आंख में नींद नहीं लगी। अगर आप चित्रकूट गए हो, कितने लोग गए हैं चित्रकूट में, तो वहां लक्ष्मण पहाड़ी है, एक लक्ष्मण पहाड़ी है जहां पर कि लक्ष्मण जी पहरा दिया करते थे। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष पत्नी से अलग रहे, नंबर एक, नंबर दो, 14 वर्ष तक सोए नहीं। त्याग की भावना आती है, एक दूसरे के प्रति त्याग है, उर्मिला का त्याग है कि पति चले गए हैं, उसने एक बार भी उफ नहीं किया कि मेरा पति शादी के बाद मुझे छोड़ के जा रहा है, कमाल है, मैं तो साथ जाऊंगी, या पति को ना जाने देती। मतलब सूर्य वंशियों का जो गुण है वो गुण क्या था कि भोग विलास के प्रति कोई आकर्षण नहीं है और राज्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं। वही बात जब आप चंद्र वंशियों में आते हैं तो भोग विलास के प्रति आकर्षण आपको दिखाई देता। किसी को उठा के देख लीजिएगा वीडियो में, कहीं ना कहीं आपको भोग विलास मिलेगा। ययाति ने पुरुष से पौरुष मांग लिया, मुझे भोग विलास से अभी मेरा मन नहीं भरा है, मुझे और चाहिए, तो मुझे पौरुष दे दो। लिया कि नहीं लिया? राजा दुष्यंत गंधर्व विवाह कर बैठे हैं शकुंतला से, तब इंद्रिय तृप्ति चाहिए। शांतनु सत्यवती से विवाह कर बैठे हैं, जब देवव्रत जैसा पुत्र है साथ में, गंगा पुत्र देवव्रत है उनके पास, जो कि स्वस्थ है, सबल है, योग्य है और युवा है, जिसको कि राज्य का भार सौंप सकते हैं। नहीं, मुझे अभी भोग विलास से तृप्ति नहीं हुई है, मेरे को सत्यवती से विवाह करना। तो उन्होंने जो है एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, फिर दूसरी प्रतिज्ञा ली। तो ये जो चंद्रवंशियों की क्वालिटी रही है, ये रही है क्या, राज्य के प्रति आकर्षण। दुर्योधन राज्य के प्रति कितना आकर्षित था, धृतराष्ट्र राज्य के प्रति कितना आकर्षित था। राज्य मेरे पुत्रों के पास रहना चाहिए, मेरे पुत्रों के पास, धृतराष्ट्र का ये एक प्रण था, नहीं तो वो दुर्योधन को फटकार सकता था, चेस्टाइज कर सकता था, डांट सकता था कि तुमने भीम को विष क्यों दिया, तो वारणावत के लाक्षाग्रह में ऐसा ऐसा वारणावत लाक्षाग्रह क्यों बनाया तुमने। परंतु ये जो मैसेज आ रहे हैं हमारे लिए आ रहे हैं कि किस तरीके से भोग विलास के प्रति आकर्षण, भौतिक संसार के प्रति आकर्षण आपको गर्त में ले जाता है। गर्त में अर्थात कौरवों का जो हश्र हुआ है वही भोग विलास के प्रति आसक्त होने वालों का भी हश्र हो सकता। एक मैसेज है, एक संदेश है जिसको हमें समझना चाहिए। ये वंशावली है, नाम है वंशावली है, इसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे तो एक एक का ढूंढने लगेंगे, विश्वक्सेन कौन था, शतानंद कौन था, ये कौन के क्या गुण थे, क्या क्वालिटी थी, उस डिटेल में ना जाके हमें मोटे तौर पे जो है इसका एक संदेश समझना चाहिए। अगर शकुंतला जो है गई है राजा दुष्यंत के पास अपने पुत्र को लेके, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं भाई वे और बैठी बहुत सारी, तुम्हारा मैं क्या करूँ, नहीं चाहिए, और बहुत सी पत्नियां हैं, ये तो आकाशवाणी होती है, उनको लिखा है प्रभुपाद यहाँ पे, आकाशवाणी होती है, उसके अंदर फिर बताया जाता है यही तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा, इसी का लालन पालन करना पड़ेगा, तब जाके वो समझता है, उसको स्वीकार करता है, उसका अंगूठी दिखाती है, सब कुछ करती है, परंतु उसको स्वीकार नहीं करता। तो अब आते हैं आज के संदर्भ में, आज का संदर्भ क्या है। भोग विलास इंद्र तृप्ति का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में उसका फल क्या है। भोग विलास करते हैं अर्थात संसार के प्रति आकर्षण, चलो और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, संसार के प्रति आकर्षण का रिजल्ट क्या है, क्या लाभ है उसका। कथा होती है ना तो बाहर जाते ही संसार की बातें होती है, भगवान की बात नहीं होती, संसार की बातें होती हैं, समझे नहीं, भगवान की बात नहीं होती। घर में है तो भगवान की बात नहीं होती, अगर दो एजेड लेडीज मिलेंगी जिनके बच्चों के विवाह हो चुके हैं तो अपनी बहू के गुणगान करेगी, अपनी बहू का गुणगान करेगी, वो अपनी दुनिया के दुख दर्द सुनाएगी, अपने दुनिया के दुख दर्द सुनाएगी, भगवान की बात नहीं होती। होती क्या नहीं होती, मतलब हमारा संसार के प्रति एक नैसर्गिक नेचुरल आकर्षण है, उस नेचुरल आकर्षण में अलग अलग लेवल पे अलग अलग कार्य हम करते हैं। कोई संसार के प्रति आकर्षण में धन के प्रति आकर्षित है, कोई परिवार के प्रति आकर्षित है, कोई स्त्री के प्रति आकर्षित है, और कोई भोग विलास के प्रति आकर्षित है। हर एक का लेवल जो है आकर्षण का अलग अलग है, आकर्षण एक भी हो सकता है, आकर्षण कई भी हो सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या है एक फंडामेंटल चीज है। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषोपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधोपजायते। जब आप संसार का चिंतन करते हो अर्थात विषयों का चिंतन करते हो तो आप में कामना उत्पन्न होती है, कामना आती है, डिजायर। जब कामना होती है तो कामना की पूर्ति के लिए कर्म होता है, भूख लगी है बहुत तेज भूख लगी। अब भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, अर्थात मेरी डिजायर हो गई कि मुझे भोजन की प्राप्ति होनी चाहिए, खाना चाहिए मेरे को। अब खाना चाहिए तो खाने को अरेंज करने के लिए, खाने को बनाने के लिए, लाने के लिए, बाजार से राशन लाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना, मतलब डिजायर होगी तो कर्म होगा। अब वो कर्म आप करेंगे गुणों के आधार पे कि आपका मूड उस वक्त जो है सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, उसके अनुसार कार्य करेंगे। और चूंकि आपने कार्य किया है अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, अर्थात उससे आपको प्रसन्नता मिलती है, संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, आपको खुशी प्राप्त होती है, भूख मिट गई है, संतोष हो गया, भूख मिट गई वगैरह वगैरह, जो भी कार्य करे, कैसा भी कार्य करे, इसका मतलब यह है कि जब आप ऐसा कार्य करते हो जिससे कि आपको संतोष की प्राप्ति होती है, तो आपने अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य किया है, इसका मतलब है कि अब आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा। तो संसार का चिंतन करने से क्या हुआ, एक ऐसे फल की प्राप्ति हुई जिसको भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए, अर्थात पुनरअपि जन्मम एंड पुनरअपि मरणम के चक्र में आप फंस गए। एक ये आपके पास चक्र ऐसा है जिससे कि आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप संसार का चिंतन कर रहे हैं, भोग विलास का चिंतन करते हैं, इंद्र तृप्ति का चिंतन करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। अब ये अलग बात है कि कार्य शास्त्र के अनुसार करते हैं या शास्त्र के विरुद्ध करते हैं। शास्त्र के अनुसार करेंगे तो पुण्य कर्म कहलाएगा, शास्त्र के विरुद्ध करेंगे तो पाप कर्म अर्थात विकर्म कहलाएगा। पाप कर्म हो उसका फल मिलेगा, पुण्य कर्म हो उसका भी फल मिलेगा, दोनों के फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। अर्थात जब संसार का चिंतन होगा तो आप जो है इस चक्र से, इस जंजाल से बाहर नहीं निकल सकते, इससे बाहर नहीं आप जा सकते। अर्थात आपको बार बार जन्म लेना होगा और बार बार आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, बार बार बुढ़ापा आएगा और बार बार व्याधि अर्थात बीमारी आएगी। बीमारी बार बार आएगी, बुढ़ापा बार बार आएगा, मृत्यु आएगी और बार बार जन्म होगा। अर्थात आप एक विशेष साइकिल, एक चक्र में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना आपके लिए कठिन होगा। चाहिए क्या, लक्ष्य क्या है जीवन का? जीवन का लक्ष्य है कि मैं इस भौतिक शरीर की समाप्ति पे दोबारा लौटकर इस शरीर की प्राप्ति न करूं, मुझे ये शरीर दोबारा प्राप्त न हो, ये शरीर किसी भी योनि में, भौतिक शरीर किसी भी योनि में मुझे प्राप्त ना हो, ऐसा मेरा जीवन का लक्ष्य है, यही शास्त्र मुझे बताता, यही भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन माम उपेत्या तो कौन था ये पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में उच्चतम लोग से लेकर न्यूनतम सारे लोग दुखों के घर हैं, और दुख क्या है, जन्म तथा मृत्यु का चक्र। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात वो दोबारा से लौट के भौतिक शरीर को धारण नहीं करता, रिलीफ हो जाता उसको जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता। अर्थात मृत्यु के उपरांत जिसने भगवान के धाम में स्थान प्राप्त कर लिया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वो भौतिक शरीर फिर से धारण नहीं करता, ये जीवन का लक्ष्य है। अब उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना, अर्थात मुझे भौतिक संसार को त्याग कर भगवान के धाम जाना है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चाहिए, बेसिक क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। भगवान के धाम जाने की एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही क्वालिफिकेशन, ओनली वन क्वालिफिकेशन, भगवान से प्रेम। किसी के घर जाना है तो उससे प्रेम होना चाहिए, तभी तो आपको एंटरटेन करेगा वो, वरना दरवाजे से बाहर कर देगा। अपने घर में तभी आने देगा जब आपका उससे प्रेम होगा, भौतिक संसार में भी। अगर आपका किसी से प्रेम है तो आपको घर में आने देगा, प्रेम नहीं है तो घर में नहीं आने देगा। इसका मतलब यह है कि मुझे भगवान के धाम अगर जाना है तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन, एक ही एलिजिबिलिटी है, वो है भगवान से प्रेम। अब वो प्रेम प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबिलिटी योग्यताएं हैं, जो क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रेम कैसे मिलेगा, प्रेम कैसे मिलेगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे कार्य हैं। भजन क्रिया चाहिए, अनर्थ निवृत्ति चाहिए, रुचि चाहिए भगवान में, निष्ठा चाहिए भगवान में, आसक्ति चाहिए भगवान में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको प्राप्त करके आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। अब उसको और सिंपलीफाई करें तो प्रेम उसी से होता है जो आपकी सेवा बढ़िया करता। अब दो नौकर रख लीजिए, एक नौकर आपकी सेवा बढ़िया करेगा उससे आपको प्रेम हो जाएगा, दूसरा नौकर सेवा बढ़िया नहीं करेगा उसको आप दुत्कारें, यार बात तो परे हो, काम धाम का नहीं, पैसे मांगने आ जाता, काम तो करता नहीं, कहना मानता नहीं, सेवा ठीक से करता नहीं, जब देखो पैसा मांगने के लिए खड़ा है। पर जो आपकी सेवा अच्छी करेगा, आपके कहना मानेगा, आपके आदेश के अनुसार चलेगा, उससे आपको नैसर्गिक तौर नेचुरल तरीके से प्रेम हो जाएगा। अर्थात प्रेम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भगवान की सेवा, कि सेवा से ही प्रेम होता, सेवा करते हैं तो प्रेम की प्राप्ति होती है। सेवा कैसे करनी है ये भी सवाल है। मुझे भगवान की सेवा करनी है तो सेवा मुझे अपने तरीके से अपनी मर्जी से करूं या जैसा भगवान चाहते हैं वैसी सेवा करूं, कौन सा फॉर्मल बेटर है, कौन सा फॉर्मेट अच्छा है? भाई जैसा वो चाहते हैं वैसी सेवा करूं तो खुश होंगे, वो कहें मुझे पानी पिलाओ मैं कहूं जी आप चाय पियो भगा देंगे। मतलब मुझे उनके आदेश के अनुसार ही, भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय 31वें श्लोक में, जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है अर्थात मेरे धाम आ जाता। मतलब उन्होंने एक फार्मूला बता दिया, फार्मूला क्या है, दूसरे अध्याय 39वें श्लोक में बताया, मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो, यदि मेरे बताए अनुसार मतलब जो ज्ञान मैं दे रहा हूं उस ज्ञान के अनुसार कार्य करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो जगह जगह पर भगवान ने कर्मों से मुक्ति का तरीका बताया है और तरीका का एंड रिजल्ट एक ही है कि मेरे कहे अनुसार कार्य करो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कार्य करो। अब भगवान के धाम जाना है अर्थात भौतिक संसार की छुटकारा गाने पे भगवान के धाम के अंदर स्थान प्राप्त करना है तो भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए तो भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए तो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करना। अब भगवान भगवद गीता में क्या आदेश देते हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार भक्तों में करता है वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और मेरे धाम आएगा। फिर दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में कहते हैं, उससे अधिक प्रिय ना तो कोई मुझे सेवक है ना कोई सेवक होगा, सेवक मीन्स सेवा करने वाला, अधिक प्रिय मतलब मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता। अब ज्ञान का प्रचार कैसे होगा, मुझे तो भाई बोलना आता नहीं, मुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता और मैं जाके पब्लिक में ज्ञान का प्रचार कैसे करूंगा भाई, इसका मतलब है मेरा तो धाम जाना निश्चित ही, भगवान का प्रिय बन नहीं सकता, मैं तो भगवान का प्रिय नहीं बन सकता ना, क्योंकि मुझे तो बोलना नहीं आता। प्रचार का मतलब तो हम ये समझते हैं ना कि बोलना आए और हम बोले लोगों को बताएं, हम बोले लोग सुने तो प्रचार हो रहा। हमारे मन में प्रचार का यही भाव आता, वो बड़ा अच्छा प्रचारक है जी, क्या करता है, बोलता बहुत अच्छा, लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हिल नहीं पाते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, बड़ा अच्छा प्रचारक है अर्थात बहुत अच्छा प्रचार करता। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं बोलना चाहता हूं, भगवान का संदेश आप तक देना चाहता हूं, भगवान का संदेश आप तक देना चाहता हूं। भगवान कहते हैं ना मेरे ज्ञान का प्रचार, मेरे ज्ञान का प्रचार आपको करना, मैं भगवान का संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक भक्त था, उसने अपने घर वालों से कहा कि आज जो है मैं मंदिर चलूंगा आपके साथ। घर वालों ने कहा तू तो अंधा है, तू तो अंधा है, तू तो भगवान को देख नहीं पाएगा, दर्शन कर नहीं पाएगा, तो तू मंदिर जाके क्या करेगा, तेरे को तो दिखाई देता नहीं है। घर वालों ने उसको टालने के मूड से मना कर दिया कि तेरे को तो दिखता नहीं है, तो भगवान को देख नहीं पाएगा, तो तेरे मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है। उसने क्या जवाब दिया, भैया एक बात बताओ, मैं अंधा हूं, भगवान तो अंधे नहीं है ना, वो तो अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे बरसा सकते हैं ना, उनकी आंखों से जो ज्योति निकलती है, उनकी आंखों से जो आशीर्वाद निकलता है, उनकी आंखों से जो कृपा होती है, वो तो मुझ पे हो सकती है ना, मैं न देख पाऊं एक अलग बात है, मैं नहीं बोल सकता एक अलग बात है, पर आप तो पढ़ सकते हो। ज्ञान की प्राप्ति के दो साधन हैं, श्रवण एक साधन है, उसके दो हिस्से हैं श्रवण के, सुनना, सुनने का मतलब यह है कि मैं ज्ञान में अर्थात जो चीजें बताई जा रही हैं उनको सुन रहा हूं, परंतु रीडिंग करते हैं तो कहते हैं हियरिंग थ्रू आईज, तब भी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जैसा ज्ञान सुनने से प्राप्त हो रहा था वैसा ही ज्ञान पढ़ने से प्राप्त हो रहा है। आप पढ़ भी रहे हैं तो भी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो भी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। किताब में जो लिखा है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, इसका क्या अर्थ हुआ कि कानों के माध्यम से पढ़ना अर्थात रीडिंग थ्रू ईयर्स, आप पढ़ना नहीं जानते थे पर मैंने आपको लिखा जो था पढ़ के सुना दिया, तो अर्थ ये हुआ कि आपने जो सुना है अर्थात हियरिंग जो है उसके माध्यम से आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ लिया। और अगर आप पढ़ना जानते हैं तो मैं कहूंगा कि हियरिंग जो है आपने पढ़ने के माध्यम से कर ली। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं प्रचार कर नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, परंतु मैं जो ग्रंथ है इस ग्रंथ को तो आपके घर पहुंचा सकता हूं ताकि आप पढ़ सको, आप तो पढ़े लिखे हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान के ज्ञान का प्रचार जो है ग्रंथों के वितरण के माध्यम से करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से करें। अर्थात जब हम प्लेज करते हैं कि हम इतनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतनी भगवान की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा भगवत गीता मैराथन चल रहा है दिसंबर के महीने में, हम लोग है सब लोग जोश खरोश के साथ जो है भगवत गीता को बांटने में लग जाते हैं, अर्थात हमने जो है ज्ञान की धारा प्रवाहित कर दी पुस्तकों के माध्यम से। हम नहीं समझा सकते, हमको बोलना नहीं आता है, परंतु हम भगवद गीता को इस पुस्तक को दूसरे व्यक्ति के घर तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो इसे पढ़ सकें, समझ सकें और ज्ञान के मार्ग पर चल सकें। तो कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड हैं जो कर रहे हैं कार्य, और कितने लोग नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान का प्रिय बनना है, भगवान ने कहा है 68वें श्लोक में दूसरे अध्याय के कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान का प्रसार करता है, प्रचार करता है, उससे अधिक प्रिय, उससे अधिक प्रिय ना तो कोई मुझे था और ना ही कोई होगा। तो भगवान के धाम जाना है भौतिक शरीर की समाप्ति के बाद, तो एक ही रास्ता है आज जो चल रहा है करंट सिनेरियो, वह है भगवान के ज्ञान का आगे वितरण करना। तो आपसे अनुरोध है कि सब लोग जो है मंदिर के अधिकारी बैठे हुए हैं, भक्तगण बैठे हुए हैं, इनसे मिलिए, इनसे कहिए कि हमको भगवान की सेवा में लगाएं, कि किस प्रकार से हम जो है पुस्तकों का वितरण कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ इट, हम उसका एक हिस्सा कैसे बन सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।